जब धर्म प्राय लोप होता है तब ही बाप आकर के फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। बाप आकर के दोनों कार्य करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना? विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े किससे? भगवान किसके द्वारा आकर के विनाश कराते? शंकर द्वारा। और विपरीत बुद्धि किसके किससे बन पड़े? बाप से। इसका मतलब बाप का जो मीडिया है, क्योंकि बाप तो बिंदु है, बिंदु से विपरीत बुद्धि बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिंदु बिंदु तो सभी आत्मा है। विपरीत बुद्धि विनश्यंती जब कहा जाता है और प्रीति बुद्धि विजयंती कहा जाता है, तो प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि साकार में ही हो सकती है, निराकार में विपरीत बुद्धि का सवाल ही नहीं। तुम्हारी तो है प्रीति बुद्धि, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है माया पर जीत पाने के लिए। तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया। दूसरा पेज। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। अच्छा, माया ने किस द्वारा तुमको बाप से बेमुख किया? माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया, तो बता भी दिया किसने बेमुख किया है। किसने बेमुख किया? माया ने। फिर दोबारा पूछा क्यों? माया ने किस द्वारा तुमको बाप से बेमुख किया? जैसे बाप आते हैं तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है और विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं, किस द्वारा? बाप आते हैं किस द्वारा विनाश कराते हैं? शंकर द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ प्रश्न किया कि माया ने तुमको बाप से बेमुख कराई दिया, तो माया ने किस द्वारा तुमको बाप से बेमुख किया है? हैं? रावण द्वारा। माया रावण तो एक ही चीज है, माया रावण देखने में थोड़ा ही आती है, न राम बाप देखने में आते हैं, न माया रावण देखने में आती है। राम बाप भी किसी के द्वारा कार्य कराते हैं और माया रावण भी किसी के द्वारा तुमको बाप से बेमुख कराती है। हैं?
बड़े बड़े
हाँ कहते हैं ये जो विद्वान पंडित आदि ने शास्त्र लिखे हैं इन द्वारा तुमको बेमुख किया है। और किससे बेमुख किया है? परमात्मा बाप से बेमुख किया है। तो द्वापर कलयुग में शास्त्र लिखे गए, तो द्वापर कलयुग में परमात्मा बाप होता है क्या मीडिया में? वहां तो परमात्मा बाप मीडिया में होता ही नहीं, जो वहां बेमुख बने तो बात कहाँ की हुई? जरूर ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की ही बात है, जहाँ शूटिंग पीरियड में जो विद्वान आचार्य शास्त्र बैठ करके लिखते उन शास्त्रवादियों के द्वारा बेमुख किया माया रावण। माया की प्रवेशता होने के कारण शास्त्रों में उल्टी ग्लानी लिख दी है। लिखी किसने? शास्त्रों में उल्टी ग्लानी लिखने वाले कौन हुए? शास्त्रवादी पंडित विद्वान आचार्य। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शास्त्र किसने लिखे है? कोई मुखिया है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई मुखिया है जिसने सबसे जाति शास्त्र लिखे? तो उसमें माया की प्रवेशता हुई है। तो ये इतनी उल्टी ग्लानी लिख दी है, मैं भी करण करावनहार हूँ, तो माया भी करण करावनहार, मैं करता भी हूँ और कराता भी हूँ। माया करती भी है और कराती भी है। तो वह माया जाए उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। कितना बड़ा मंदिर तू बनाया, किसका मंदिर बनाया, नाम क्या दिया? सोमनाथ। एक तो सोम रस कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है सोम माना चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, तो वास्तव में अमृत कोई पीने की चीज नहीं है, ये ज्ञान अमृत की बात है। जो ज्ञान चंद्रमा से निकलता है, उस ज्ञान चंद्रमा का जो स्वामी है नाथ, उसको कंट्रोल करने वाला गीतापति भगवान जिसको कहा जाता है, उसका यादगार मंदिर इतना बड़ा है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला रावण है। द्वापर से कौन सी ऐसी आत्मा का प्रभाव होता है जिससे रावण की मत शुरू होती है? द्वापर से आते हैं दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। उनमें भी दो प्रकार के हैं, एक हैं भारतीय और दूसरे हैं विदेशी। तो जो विदेशी हैं वही विपरीत बुद्धि बनते हैं। विपरीत बुद्धि किस मामले में? क्योंकि व्यभिचारी बुद्धि होते हैं। भारत में व्यभिचार को मान्यता नहीं है, अब व्यभिचारी पने की मान्यता है। तो भारत के जो भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, ये सब ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले, अब व्यभिचारी पने का पोषण करने वाले। और लेफ्ट साइड के जितने भी धर्म हैं विदेशी, वो सब व्यभिचारी वृत्तियों को पोषण करने वाले और अब व्यभिचारी पने को नष्ट करने वाले। तो जो विदेशी धर्म हैं और विदेशी धर्मों के धर्म पिताएं हैं, वो तो परमधाम से आने वाली आत्माएं हैं। परमधाम से तो आत्मा तत्व प्रधान आएगी या समय प्रधान आएगी? तत्व प्रधान आत्मा आती है, इसलिए उनको रावण नहीं कह सकते। अगर उनको रावण कहा जाए तो विदेशों में रावण का पुतला जलाया जाना चाहिए, लेकिन विदेशों में रावण का पुतला बना करके नहीं दशहरा मनाते। कहाँ मनाते हैं? भारतवर्ष में मनाते हैं। तो ये भारत की बात है, कब की? संगम युग की बातें हैं ये सारी, कि संगम युग में उन्हीं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के जो आधारभूत आत्माएं बनती हैं, भारतीय आत्माएं, जो आधारभूत आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का आधार बनती हैं, वो संगम युग में परमात्मा बाप के कनेक्शन में आती है और अपने अपने धर्म का फाउंडेशन लगाने की शूटिंग करने के निमित्त बनती है। तो वो हो गई आधार, आधार माना माता, उन विदेशी धर्मों की माताएं, और फिर उनके बीज भी हैं, उन जड़ों को जन्म देने वाले बीज, जड़ कहा जाता है आधार को। तो उन जड़ों को, आधार मूर्तों को जन्म देने वाले ज्ञान में, वो है बीज। ये बीज यज्ञ के आदि में भी थे, जिन्होंने उन जड़ों को जन्म दिया, वो यज्ञ के आदि बीज रूप आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी थी, वो फिर मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में दोबारा जा करके जन्म लेती है, ज्ञान लेती है। और वो बीज रूप बाप समान आत्माएं जो उन धर्मों के बीज हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये हुआ रावण का रूप। आधार मूर्त माताएं माने मंदोदरी, मंदोदरी के पांच रूप, पांच मुख स्त्री के और पांच मुख पुरुष के, माने बीज रूप आत्माएं। इस्लामी, कामी, क्रोधी, क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, मोहियारी समाजी और अहंकारी रशियंस, इन पांच विधर्मियों के जो आधार मूर्त हैं वो हो गई मंदोदरियां। मंद है उधर जिनका, अर्थात बुद्धि रूपी पेट उनका मंद है, वो ज्ञान की गहराइयों को अपने आप उतना समझ नहीं सकती। और रावण के फंदे में फंस करके रहती, माना जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्माओं के द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाता है। तो इस्लामी आदि आदि इनके जो बीज हैं वही उनको कंट्रोल करने वाले पिता हैं, रावण के रूप हैं, पुरुष मुख हैं। तो ये रावण की मत पर द्वापर युग से कार्य होता है। रावण द्वापर से सत्ता में आता है, जैसे सचु की शूटिंग में मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये रावण संप्रदाय आधार मूर्त सभा वो सत्ता में आ गए। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की सत्ता इनके हाथ में आ गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी द्वापर युगी शूटिंग जब से शुरू होती है, त्रेता युगी शूटिंग का जो द्वापर है, रजो प्रधान पीरियड है, उसमें ये विदेशी आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सत्ता में आ जाती है दिल्ली के तख्ती पर। और सारी राजधानी इनके कंट्रोल में आ जाती है। पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तो ये विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला जो द्वापर युग से रावण है, वो राम शिव बाबा के फ्रंट में खड़ा हो जाता है। गीत भी तुम बच्चों ने सुना है, शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे, क्यों परमात्माय नमः कहेंगे? ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे, नहीं, ब्रह्मा कोई परमात्मा थोड़ा ही है, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से बच्चा मिल रहा है, ये पाठशाला है मनुष्य की देवता बनने की, गॉड फादरली कॉलेज है, ये भगवान वाच है, नाम लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एम आर सी भी लिखी पड़ी है, क्या नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है? तो तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो, श्रीमत का चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाकर के बाप को याद करो। बाबा हम आपको याद करेंगे, आपके पास ही हमको आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये क्या बात हुई? बाबा को बुलाते भी जाते हैं, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तो जरूर जिससे कहा वो सामने बैठा हुआ है ना, हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही हमको आना। तो जब पुकारा है तो पास आए हुए हैं तभी पुकारा है कि दूर से? फिर आना कहाँ है? पास आने का मतलब क्या हुआ? आपके पास ही हमको आना है, नजदीक आना है, समीप। तो समीप आने का मतलब कोई स्थूल रूप में नहीं है, शरीर से समीप और शरीर से सन्मुख होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से सन्मुख होना, मना मन मना भगवान, मन बुद्धि से समीप रहना, माना बाप और बच्चे के संकल्प एक हो जाए, कोई प्रकार का संकल्प मात्र भी विरोध न रहे, उसको कहेंगे समीपाना। पुरुषार्थ में समीपाना, स्वभाव संस्कार में समीपाना। तो इसलिए बोला कि हम आपके ही पास आवेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। तो मन मना भव का अर्थ है ये साधु संन्यासी लोग नहीं समझ सकते, क्या कि पास में आने का मतलब क्या है, या मनमना भव का सही अर्थ क्या है? मनमना भव का सही अर्थ क्या हुआ? मेरे मन में समा जा, माना जो मेरे संकल्प हैं वो ही तेरे संकल्प हैं। मेरे संकल्पों में और तेरे संकल्प में कोई भेद पैदा न हो, संकल्प मात्र भी भेद न हो, विरोधाभास न हो, तो वाचा में और कर्मणा में विरोध हो कैसे सकता? तो उस बात के अर्थ को सन्यासी लोग नहीं समझेंगे। कहते हैं नारी नरक का द्वार है और बाप तो तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो उल्टी बात हो गई ना। वो कहते हैं नरक का द्वार और तुम कहते हो कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, नरक का द्वार बंद करती है और स्वर्ग का द्वार खोलती है। व्यभिचारी द्वार बंद होता है और अव्यभिचारी द्वार खुल जाता है। वैश्यालय बंद होता है और शिवालय का द्वार खुल जाता है। वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या तो व्यभिचारी नहीं होती, एक के अंडर में तो उसको रहना नहीं है, एक के अंडर में चलना नहीं है, एक का तन धन धाम स्वर्ग परिवार यूज करना नहीं है, तो वो तो हो गई व्यभिचारी। तो तुम बच्चों ने ये बात जानी है कि माताओं के द्वारा बाप कैसे स्वर्ग का द्वार खुलवाते। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे, तुम्हारी योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है, वहां माया नहीं होती है, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमानी के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं, अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते। सतगुरु में वो देवी गुण वाले थे, अब आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। आसुरी गुण बनाने वाली माया दुश्मन है, पूरा वैश्यालय बनाई देती है। तो अब तुम शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने बाप से वर्षा ले रहे। ये कालेज है, जब तक विराट हो बाप तुमको पढ़ाते रहे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वो मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। बाकी ऐसे नहीं कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाते, इस समय सब पाप आत्माएं हैं, चाहे गंगा हो और चाहे जमुना हो। क्या सब पाप आत्माएं क्यों हैं? गंगा यमुना भी मैली क्यों हो जाती है? क्योंकि परमात्मा बाप से जब संबंध संपर्क टूट जाता है तो नदियां भी नाला बन जाती है। पवित्र आत्मा इस दुनिया में एक भी नहीं, सबका कनेक्शन टूटा हुआ है। कहते हैं ये पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि ये पतित दुनिया है। पतित पावन आएंगे तो कहाँ आएंगे? पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे ना, और फिर संबंध संपर्क किससे करेंगे? पतितों से ही संबंध संपर्क करेंगे ना, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, सन्यासी की बुद्धि कि हम पतित हैं। अगर ये उनकी बुद्धि में बैठ जाए तो पतित दुनिया में हम भी पतित हैं, तो फिर अहंकार न रहे। उनमें तो बहुत अहंकार होता है देह का, पवित्रता का। अब तुम बच्चे तो ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने छोड़े हो, तू ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे? ये सुदर्शन चक्र है, पिता देव पुनर्जन्म, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हुए हैं, सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा तो हो नहीं सकता। कौन सा? जिसके हाथ में वेद शास्त्र हो, तो सूक्ष्म मतनवासी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है? जरूर साकार में कोई ब्रह्मा हुआ है जिसके हाथ में वेद शास्त्र बेहद के दिखाए गए। वो ब्रह्मा उन वेद शास्त्रों का पढ़ने वाला है, उनका सार समझाने वाला नहीं है। सार समझाने वाला कौन है? एक सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा बैठे, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। सुसूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र नहीं हो सकते, उसका तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा होता है सूक्ष्म बतन में, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी नहीं हो सकता। जहाँ प्रजा होगी 500 करोड़, वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा होगा। जिस प्रजापिता ब्रह्मा को एडम और आदम भी कहते हैं, तो जो चित्र बने हैं वेद शास्त्र हाथ में दिखाए गए हैं भक्ति मार्ग के चित्रों में, वो किस समय की यादगार हुई? जरूर वर्तमान समय संगम की यादगार हुई। और संगम युग में भी दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू जो कार्य हुआ उसे उस चित्र से टैली नहीं कर सकते जिसमें वेद शास्त्र हाथ में दिखाए हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी पुस्तक हाथ में लेकर के बताया ही नहीं। इस सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है प्रजापिता ब्रह्मा। जिसकी यादगार कलकत्ते में बनी हुई है बनियन ट्री, जूलॉजिकल गार्डन, तो ये तो तुम जानते हो। हम रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्मा वहां से आते हैं, हमारा निवास स्थान वो परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है अविनाशी। ये सब बातें तो पत्र तो मनुष्य नहीं समझ सकते। क्या पति तो मनुष्य क्या नहीं समझ सकते कि हर आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है? हर आत्मा को मिला हुआ है? हर आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट कहाँ मिला हुआ है? उनके तो जन्म ही कम होते हैं। हाँ, आत्मिक स्टेज में टिकने वाली जो आत्माएं हैं वास्तव में आत्मा, उनको ही उस पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, माने ऑलराउंड पार्ट मिला हुआ है। सत्य रूपी रंगमच पर उनका पार्ट किसी जन्म में खलास नहीं होता है। तो ये बातें पतित मनुष्य नहीं समझ सकते। जिनकी बुद्धि पतित है उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी कि सिर्फ 9 लाख आत्मा ही ऐसी हैं जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली है और बाकी सब वे अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं। क्या पूरा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती हैं? क्या विनाशी हैं या अविनाशी हैं 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं? सत्य रूपी रंगमंच पर तो जरूर उनका विनाश हो जाता है। सत्य रूपी रंगमंच पर सदा काल का अविनाशी पार्ट वो बजा नहीं सकते। जैसे शिव बाबा ने अपने लिए कहा, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो कौन सा शिव बाबा? सुप्रीम सोल के लिए तो ये बात लागू नहीं होती। जरूर वो सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करके शिव बाबा बनता है, उस तन को धारण करने वाली जो आत्मा है प्रजापिता, वो ऑलराउंड पार्टधारी है। तो बताया, ये सब बातें मनुष्य नहीं समझ सकते। पतित पतित से 52 बात ही बनाएंगे, वही सर पर दया करने वाला, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर नहीं बन सकता। क्या अपने अपने ग्रुपों पर दया कर सकते हैं? अपने अपने फॉलोअर्स पर सीमित रूप में दया कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया 500 करोड़ के ऊपर कोई दया करने वाला नहीं हो सकता। सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के, प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम क्यों लगा दिया? क्योंकि वो सब में व्यापक होकर के सर्वोदया लीडर नहीं बनता, वो सिर्फ एक व्यापी बनकर के सर्वोदया लीडर बनता है, जो एक सब मनुष्य आत्माओं का पिता है। तो ये तो बात ही बनते हैं।
باپ کو تو ترس پڑتا ہے, بچوں پر جب بہت دکھی بن پڑتے ہیں تب میں آتا ہوں. تم بچے تن من دھن سے بھارت کی سیوا کر کے سورگ کو بھارت کو سورگ بناتے ہو. کون سے بچے بھارت کو سورگ بنانے والے بچے کتنے ہوئے, کون سے ہوئے؟ 84 جنم لینے والے بچے, جو 900,000 ستارے ہیں وہی 900,000 ہے جو اس بھارت کو سورگ بنانے کی سیوا کرتے ہیں. تنس
جیسے گاندھی نے فارنر سے راج ہاتھ میں لیا, پرنتو وہاں تو رونے کے پانی میں سب. ابھی مایا بھی فارنر آدھا کلپ سے راج کیا ہے. کیا فارنر ہے مانا؟ مایا ودیشی ہے. مایا بھی ابھی سودیشی نہیں ہے. مایا جب سودیشی بن جائے گی تو بھارت کی سیوا کرنے لگ پڑے گی. ابھی مایا ودیشی ہے, فارنر ہے, تو بھارت کو کیا بنایا ہوا ہے؟ غلام بنایا ہوا ہے. باپ آ کر کے اس مایا کی جنجیروں سے چھڑاتے ہیں. ان فارنر سے تو بھارت کو کوئی دکھ نہیں ہوا. اس سمے تو بہت سکھی تھے, اس مایا نے تو بہت دکھی کر دیا. اس لیے باپ کہتے ہیں میں آتا ہوں تم کو لبریٹ کرنے. تو اب سریمت پر چلو, اب سریمت پر چلو, نہیں تو مایا ایک دم کچا کھا جائے گی, پک بھی نہیں پاؤ گے. سریمت پر چل کر کے شیش بنو. پر تم ہو شیو شکتی پانڈو سینا, تمہارا یادگار دلوارا مندر کھڑا ہے. پریکٹیکل میں دلوارا مندر ہے ایکوریٹ, کب پریکٹیکل میں دلوارا مندر کب سے کہا جائے ہے؟ جب براہمنوں کی دنیا کا ایسا سنگٹھن بن جائے تپسیا مورت. ابھی تم بچے سچا دلوارا مندر نہیں لکھ سکتے. ایسے مرلی میں کیوں بولا؟ کیونکہ بچے ابھی سدا کال کی تپسیا مورت نہیں بنے, تپسی یوگی نہیں بنے. یوگی نہیں ہے تو پھر کیا ہوئے؟ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج میں بھوگی بھی ہے. تو جب تک ایکوریٹ تپسی مورت نہیں بنے ہیں تب تک سچا دلوارا مندر لکھ بھی نہیں سکتے. تو پریکٹیکل میں دلوارا مندر نہیں کہیں گے. لیکن بابا نے بولا ہے پریکٹیکل میں دلوارا مندر ہے, یہ ایکوریٹ. تو کس کی طرف اشارہ کیا؟ ضرور ماؤنٹ آبو میں ہی, ماؤنٹ آبو کی دھرنی میں ہی سنگٹھت روپ میں ہم براہمنوں کا ایسا سنگٹھن بنے گا جس میں ہم سب بچے تپسیا مورت ہوں گے. پریکٹیکل میں دلوارا مندر بنے گا اور لکھا بھی جا سکے گا. ابھی اگر لکھ دیں تو وہ جینی لوگ آ کر کے لڑیں گے. تو راج یوگ سے تو تم بچے سورگ کے مالک بنتے. بھارت سورگ تھا نا, اب تم پرم پتا پرماتما کی شرن میں آئے ہو باپ سے بے حد کا ورتا لینے. اس پیڑھی دیوی دیوتاؤں کا راج چلتا ہے, تم آتے ہو سورگ کا مالک بننے کے لیے. ہمارے آنے کا, باپ کے پاس آنے کا اہم آبجیکٹ کیا ہے؟ سورگ کا مالک بنے. اہم آبجیکٹ پورا نہ ہو اور باپ بیچ میں چلا جائے, ایسا تھوڑی ہو سکتا. مایا نے ہم کو بھسماسر بنا دیا. بھسماسر نے کیا کیا؟ جس سے وردان لیا, جس سے پڑھائی پڑھی, اسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ان کو کہتے ہیں بھسماسر بھسماسری. باپ آ کر کے گیان امرت کی ورشا کرتے ہیں, باپ کی شرم بھی لیتے ہیں, پھر مایا ٹریڈر بنا دیتی. تو دیکھو پھر آپ الاؤ پر کتنے اتیاچار ہوتے ہیں. گورنمنٹ تو ہے نہیں, ساورنٹی تو ہے نہیں. باپ آ کر کے ڈی پی ساورنٹی استھاپن کرتے ہیں. چتر آج میں مہاراجا مہارانی تھے, ابھی تو نو ساورنٹی. پرجا کا پرجا پر راج ہے. इसको कहा जाता है अधर्म। ताकत किसमें होती है? धर्म में ताकत होती है, वो भी धर्म में सब ताकत होती है। जब धर्म की सत्ता एक राजा के हाथ में हो, जब धर्म की सत्ता अनेक हाथों में बटी हुई है, राज्य की सत्ता प्रजाजनों के हाथ में बटी हुई है, तो प्रजा में ज्यादा ताकत होती है या राजा में ज्यादा ताकत होती है? प्रजा तो ढेर की ढेर होती है, भेड़ों में सल तो भेड़ बकरियों में ताकत हो रही होती, उनकी बुद्धि एक जैसी काम ही नहीं कर सकती, तो माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है। जो भेड़ बकरियों का राज्य स्थापन करने वाली है माया, और बाप आकर के पावरफुल आत्माओं का राज्य स्थापन करते हैं। मानो ये माला रूपी संगठन बनाने का काम किसका? बाप का। श्रेष्ठ आत्माओं को चुनना और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं को संसार के सामने डिक्लेयर करना, ये बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो बाप फिर आकर के धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, जिसमें धारणाओं का कोई सवाल ही नहीं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। भारत की गवर्नमेंट क्या कहती है? हमारा राज्य कैसा है? धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। तुम किसी धर्म को भी मानो, कोई भी धर्म को मानो, लेकिन सिर्फ वो धर्म को देते रहो। तो धर्म की उनके पास मान्यता नहीं है, गोया वो अधर्मी हैं। तो जहां रिलीजन माइट नहीं है, क्योंकि रिलीजन में ही माइट है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है, तो माइट नहीं तो राज्य क्या चलेगा? कोई कानून स्थाई रह नहीं सकता। आज एक कानून बनाएंगे, कल दूसरा कानून बन जाएगा, पहले वाले कानून को कट कर देंगे, तो रोज नए कानून बनते हैं और रोज उनको बिगाड़ा जाता है। तो इसे ताकत कहेंगे, इसको माइट कहेंगे, तो ये भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ करके खत्म हो जाएंगे। ऐसे प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य का अंजाम क्या होगा? कि आपस में लड़ाई होगी और खलास हो जाए। तुमको बाबा आकर के अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, बाप आत्माओं से बात करते हैं क्या? दो अभिमान में रहने वालों से बात ही नहीं करते। बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है, और आत्माएं कितनी बताई? जो अविनाशी आत्माएं हैं वो वास्तव में कितनी हैं? 9 लाख आत्माएं हैं जिनसे बाप बात करते हैं, बाकी से तो बाप बात ही नहीं करते। अम्मा बात कर सकती है, लेकिन बाप 9 लाख के अलावा और दूसरों से बात ही नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है, जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्मादी के बन जाएंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाप की भी डिफिनीशन बताई दी, कौन से बाप? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे और बुद्धि का योग और कोई के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे, क्योंकि बाप तो दुनिया में बहुत है। लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर के अलग अलग होते हैं, और अलौकिक में भी अनेक प्रकार के ग्रुप्स हैं, अपने अपने धर्म के धर्म पिता हैं, सब अपने अपने ग्रुप के बाप हैं। तो यहाँ कौन से बाप की बात की? जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको अगर सारस्वती जी बुद्धि का योग कोई और संग के और के साथ जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने के लिए, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं मैं आकर के अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ, बाप आकर के ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आचरीवत भागंती हो जाते, तो समझो अति महापापात्मा अजामिल है। भगवान आकर के मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वो फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा हुआ है। किससे मिला? अजा से, अजा माना बकरी से जाके मिल गया, और बकरियों का जो संग करेगा तो पावर कैसी मिलेगी? बकरियों जैसी ही पावर मिल जाएगी। तो भगवान आकर के मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वो फट जाता है, है? दादा लेखराज का कपड़ा कैसा हुआ? है? मैला कपड़ा हुआ तो फट पड़ा, किससे मिला? है? बकरी से मिला होगा, बकरी कौन? मुरली में बोला है इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। भगवान तो अपना काम करके चला गया, वो तो मुरली सुना के चला जाता है, स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? मैं तो मैं करने वाली को क्या कहा जाता है? बकरी। ये बकरियों का देश है, भेड़ बकरियों का देश, जिसका नाम रखा है अजमेर। वहाँ ब्रह्मा की जड़मूर्ति बनाते हैं, कहाँ? जहाँ मुसलमानों का मेला लगता है, अजमेर में। वहाँ पुष्करणी ब्राह्मण बहुत होते हैं। कैसे ब्राह्मण? पुष्करणी, धक्का परेड से ज्ञान में चलने वाले। ज्ञान में चलने की उनकी अपनी अकल नहीं है, अपना लगाव नहीं है, सिर्फ है सुखवंशावली बने हैं। सुख अर्थात गोद, ब्रह्मा की गोद का प्यार उनको धक्का दे रहा है ज्ञान में चलने के लिए। बाकी मुखवंशावली नहीं है, परमात्मा जो मुख से ज्ञान सुनाता है उससे प्यार नहीं है। ज्ञान की बातों से कोई लेन देन नहीं, लेन देन किससे है? देह से, देहधारियों से, दीदियों से, दादाओं से। तो दीदी दादी दादाओं से योग लगाने वाले हैं, बाकी परमात्मा के ज्ञान से उनको कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दें तो वो नंबर वन अजामिल हो गया। किसने फारकती दी? ब्रह्मा ने फारकती दी क्या? ब्रह्मा ने बाप का बनकर फारकती दी क्या? यज्ञ के आदि में फारकती दी। ब्रह्मा को साक्षात्कारों का रहस्य का पता किससे पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू पता पड़ा ना, तो जिसके द्वारा ज्ञान की बात का पता पड़ा उसी को बाद में छोड़ दिया, उसकी बात नहीं मानी, तो भस्मासुर बन पड़ना जरूरी है, बन नहीं था। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो नंबर बना जामिल है। इन जैसा पापात्मा कोई होता नहीं है, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। इसलिए ये पास का मिसाल बताई दिया कि अगर बाप मिला है तो श्रीमत पर चलना है, अगर नहीं मिला है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बाप मिला और फिर मिलकर के भी श्रीमत पर नहीं चले, पाप कर्म करते रहे, जैसा बाप चलाना चाहता वैसा नहीं चले, तो सौ गुना हजार गुना लाख गुना बोझा करता है, तो मल्टीप्लाई होता रहता है, आत्मा को ऊंची स्टेज में नहीं करने देगा और फिर बागंती हो जाएंगे, माया कच्चाई खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देगी। जिन्होंने शास्त्र बैठ बनाए हैं उन्होंने ऐसे स्वर्ग को भी कलंकित कर दिया है। भारत में ढेर के ढेर शास्त्र क्यों है? जिन्होंने शास्त्र बैठ बनाए हैं उन्होंने ऐसे स्वर्ग को भी कलंकित कर दिया। आसुरी मत पर और शास्त्र यादगार कहां की बने हैं? संगमी की यादगार है। ऐसे स्वरग को भी कलंकित कर दिया है। कैसे स्वरग को? यहाँ दुख का नाम निशान नहीं था सत्युग त्रेता में। हाँ, वहाँ दुख देने वाले राक्षस दिखाई दिए, बताए दिए। ये सब किसकी मत पर किया? आखिरी मत पर, श्रीमत और आखिरी मत में रात दिन का फर्क है। श्रीमाना शेष, शेष की मत और अकुल मन मृत की मत। आखिरी मत पर गीता बनाए, उनको भी खंडित कर दिया। और ईश्वरी मत पर गीता कैसे बनती है? दोनों में अंतर क्या है? हैं? दोनों ही संगम युग पर शूटिंग होती है। आखिरी मत की गीता की भी शूटिंग यहाँ होगी, तो ईश्वरी मत की गीता की भी शूटिंग यहाँ होगी। यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो फिर वहाँ नई या पुरानी दुनिया बनेगी कैसे? हाँ, सन्मुख बाप आकर जो डायरेक्ट सुनाते हैं साकार तन में प्रवेश करके, रू बरू मुख के सामने बैठकर, वो होती है ईश्वरीय गीता। और फिर बाद में आसुर अपनी मन मत या मनुष्यों की मत पर बैठ करके जो परमात्मा का सुनाया हुआ उसमें मिक्स करके सुनाते हैं और फिर उसको खंडित कर देते हैं। जो गीता सुनाते हैं, लिखते हैं, छपाते हैं और फिर उसको खंडित भी करते हैं। आखिरी मत पर गीता बनाए, उनको भी खंडित कर दिया। बनाते ही सिर्फ है इतना ही नहीं, उसमें नाम डाल दिया साकार कृष्ण का, निराकार बाप की जगह, प्रजापिता की जगह किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो खंडित कर दिया। फिर भागवत में भी कृष्ण को गाली दे दी है तो भागवत को भी खंडित कर दिया। भागवत में कृष्ण की ग्लानी भी की और ग्लानी करने के साथ साथ कृष्ण की ग्लानी की या भगवान की ग्लानी की? जैसे गीता में कृष्ण का नाम डाल, भगवान का रूप कृष्ण साकार बना दिया तो गीता खंडित हो गई, बाप को गुम कर दिया। ऐसे ही भागवत में भी बाप निराकार को गुम कर दिया जिसके पीछे गोपियां भागते हैं, और कृष्ण साकार को प्रत्यक्ष कर दिया, माना ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कर दिया। और निराकार बाप जिस स्वरूप के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा भगाने का कार्य करता है उसको गुम कर दिया। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये है सब प्रजापिता की कहानी। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे, कोई ने 20-30 हजार दिया तो उनको टाइटल मिल जाता था, ऐसे चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इसको 20-30 हजार टाइटल दिया गवर्नमेंट को। बाबा तो अनुभवी है ना, याद ही यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? जो ज्यादा पैसा दे वो गद्दी नकी बन जाए। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। दूसरा दे ऐसा जैसा रथ थोड़े ही लेंगे, بڑے بڑے راجائیں ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے بہت فرسٹ کلاس کرتے ہیں. بابا نے تو رکھ لیا ہے. مثال کس کا دیا؟ بڑے بڑے راجاؤں کا. بڑے بڑے راجائیں ہوتے ہیں تو سواری کائے پہ کرتے ہیں؟ فرسٹ کلاس گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں. ہاں جانوروں میں بھی کوئی کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے اونٹ کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں, بیٹھو تو جیسے ایروپلین چلتا ہے ایسے اڑتے ہیں. اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو بہت ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں تب چلتے ہیں, چلتے ہی نہیں. مثال کس کی دے رہے تھے؟ مثال ان جانوروں کی دے رہے ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ رتھ کی. بابا نے کوئی ایسا جیسا رتھ تھوڑے لیا جو ڈنڈے لگانے پڑے تب چلے. مانا انوبھوی رتھ لیا ہے. تو برابر یہ بھارت 5000 ورس پہلے سورگ تھا, یہ تو مشہور ہے. کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کرائسٹ سے 3000 ورس پہلے سورگ تھا. کرائسٹ کو کتنے سال ہوئے؟ 2000 سال ہونے والے ہیں 6-8 ورس میں. اور کرائسٹ سے 3000 سال پہلے تو کل ٹوٹل کتنے ہوئے؟ آج سے 5000 سال پہلے. مانا کون سا پیریڈ ہوا؟ یہی سنگم بھی پیریڈ ہوا نا. تو اس جو ابھی پیریڈ بچا ہوا اس کے لیے یہ بولا کہ کرائسٹ سے 3000 سال پہلے بھارت میں پیراڈائز تھا. تو برابر کلپ 5000 ورس کا ہو گیا. خود ہی کلپ کی آیو بتلاتے ہیں, سرسکتی کو لاکھوں ورس کہہ دیتے ہیں. ایسی ایسی پوائنٹس بابا سمجھاتے ہیں تو دھارنا کر کے سمجھاتے ہیں, پرنتو سمجھتے نہیں ہیں. ابھی تم بچے جانتے ہو برابر ہم شیشٹاچاری تھے. یتھا راجا رانی تتھا پرجا شیش تھے. شیر بکری اکٹھے جل پیتے تھے. اب ستیگ میں تو بکری نہیں ہوگی, بھیڑ بکریاں گند کرنے والی ہوں گی کیا باں؟ یہ بھی آنے والا جو 21 جنموں میں سے پہلے جنم کا سورگ ہے سنگم ندھی سورگ, اس کی مثال ہے شاستروں میں کہ شیر بکری اکٹھے جل پیتے تھے. مانا شیر جیسی آتمائیں اور بکری جیسی آدھین رہنے والی آتمائیں بھی ایک گھاٹ پانی پیتے تھے. کون سا پانی؟ گیان جل. شیر بکری کٹھے جل پیتے تھے. وہ کنس جرا سندھی ہرنا کشپ آدھے کچھ نہیں تھے. جو سنگم کی سورگ ہوگا اس میں یہ کچھ نہیں ہوگی. اس سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ سنگم کا مطلب یہ ہے دو یوگوں کا میل, کلیوگ کا انت اور ستیوگ کا آدھی. تو ستیوگ کا آدھی ہوگا تو گند کرنے والے دکھ دینے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے. اور ستیوگ کے آدھی ہونے سے پہلے وہ ساری کنسی جرا سنگھ جی ہرنا کشپ آدھی ہوتے. ہرنا کشپ آدھی کو ستیوگ میں اور کرشن کو پھر دواپر میں لے گئے. یہ بھی یادگار کہاں کی ہوئی؟ شوٹنگ کا حساب ہے. ستی کی شوٹنگ ہوتی ہے تو ہرنا کشپ آدھی اپنا پارٹ بجاتے ہیں, ہم ہی بھگوان ہیں. ستی کی شوٹنگ کب سے کب تک ہے؟ 76 تک. تو 76 تک جو آنے والے بڑے بڑے مہارتھی ہیں یگی کے اندر ہولڈ کرنے والے, انہیں میں سے اپنے کو ہرنا کشپ کہلانے والے بھی سنسار میں ثابت ہو جاتے ہیں. جو اپنے کو بھگوان سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں ہی سورگ استھاپن کریں گے, ہماری مت پر چلو. تو شاستروں نے بھی ہرنا کشپ کو کون سی یوگ میں ڈال دیا؟ ستیگ میں ڈال دیا. غلط تو نہیں کیا, غلط نہیں کیا, انہوں نے صحیح ڈال دیا, کیونکہ سنگم کی یادگار ہے.
हर कश्यप आदि को सतयुग में और कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए।
कृष्ण को द्वापर में क्यों ले गए?
क्योंकि द्वापर युग जब शुरू होती है तो कृष्ण वाली सोल माना ब्रह्मा वाला व्यक्तित्व दादा लेखराज जिन्होंने 69 में करी छोड़ दिया, वही आत्मा किसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा 89 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है जब द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। तो इसलिए कृष्ण को कौन सी युग में डाला? द्वापर युग। और रावण को त्रेता में ले जाते हैं। त्रेता में रावण को ले जाते हैं और राम को ले जाते हैं क्योंकि राम और रावण का कनेक्शन है। कृष्ण और कंस का 16 नंबर के रजिस्टर में 166 पेज अर्थात दूसरे पेज का मध्याधि 25/4/88 का तात्पर्य। रावण को या राम को त्रेता में क्यों ले गए हैं? क्योंकि त्रेता युग में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और जो रावण है मंदोदरी नहीं रावण लोगों को जो रुलाता है संसार को जो रुलाता है उसको कहा गया रावण। तो रावण का रूप ज्यादा मजबूत होगा या मंदोदरी का रूप ज्यादा मजबूत होगा? रावण ज्यादा मजबूत होगा। रावण मंदोदरी को भी रुलाएगा तो सीताओं को भी रुलाएगा और राम को भी। जब सीता चुराई जाएगी तो राम भी रोएगा। तो रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। तो रावण का रूप कौन सा हुआ? आधारभूत या बीज रूप? क्योंकि जो आधार होते हैं वो तो है माताएं। जैसे परमात्मा ऊपर से आता है, धर्म पिता ऊपर से आता है, राम को भी जब सीता चुराई जाएगी राम भी रोएगा। तो रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। तो रावण का रूप कौन सा हुआ? आधार भूत या बीज रूप? क्योंकि जो आधार होते हैं वो तो है माताएं। जैसे परमात्मा ऊपर से आता है, धर्म पिता ऊपर से आते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हो गया आधार। तो जो आधार बने वो उस धर्म की माता हो गए। जैसे इब्राहिम ने जिसमें प्रवेश किया वो इस्लाम धर्म की माता हो गई। क्राइस्ट ने जिसमें प्रवेश किया वो क्रिश्चियन धर्म की माता हो गई। ऐसे ही परमात्मा शिव निराकारी स्टेज वाले ने जिसका आधार किया मन कृष्ण वाली सोच वो देवी देवता सनातन धर्म का आधार हो गई। तो आधार माना माता। घर गृहस्थी की रचना करने के लिए जिसके ऊपर सारा वजन डाल दिया जाए उसको क्या कहते हैं? माता। तो ऐसे ही रावण का जो रूप बनाया है उसमें 5 पुरुष मुख और 5 वास्तव में है स्त्री मुख। अब भक्ति मार्ग में तो 10 मुखों को पुरुष मुख ही दिखाई दिया है। वो भी शूटिंग कहां की है? वो भी इसी समय की शूटिंग है। कैसे? क्योंकि जो आधारभूत हैं वो सारे के सारे आधारभूत स्त्री चोले में भले नहीं है लेकिन ऐसे स्त्रियों जैसी करने वाले अपनी बुद्धि की तीखी नहीं है, इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इसलिए उनका नाम रखा मंद उदरी। उदर माना पेट। मंद उदर वाले जो अपनी बुद्धि से ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझ सकते वो है आधार मूर्त आत्माएं, मंदोदरी का पाठ बजाने वाले, रावण के घर परिवार में माता का पाठ बजाने वाले, जो उन्होंने रावण संप्रदाय के धर्मों के आधार बनते हैं द्वापर कलयुग। तो रावण राज्य मंदोदरी के ऊपर पहले हुआ ना। रावण मंदोदरी को भी कंट्रोल करने वाला हुआ। तो ये जो नारायण है दूसरे दूसरे धर्मों के आधारभूत, वो हो गए मंदोदरी के पार्ट। रावण कौन हुआ? उन आधार मूर्त जड़ों को भी जो जन्म देने वाले बीज हैं, जो यज्ञ के आज में भी थे, और फिर सती की शूटिंग पूरी होने के बाद त्रेता की शूटिंग में फिर वही बीज प्रत्यक्ष होते हैं, विदेशी धर्मों के बीज, वो रावण के रूप है। कामी इस्लामी का बीज, क्रोधी क्रिश्चियन का बीज, लोभी मुस्लिम का बीज, माना पांचों विकारों के कोई बीज हैं, जिनमें टूट कूट करके वो विकार भरे हुए। तो बताया रावण को त्रेता में ले जाते हैं, कारण समझ में आया कि राम और रावण को त्रेता में क्यों ले गए? जो सत्युग के आज वाले बीज थे, राम और रावण का पार्ट बजाने वाले, वो सत्युग की शूटिंग पूरी होने पर त्रेता के आज में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। राम वाली आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होती है, और रावण का पार्ट बजाने वाले विदेशी बीज भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो रावण को त्रेता में ले गए। अब असुरों के सबके नाम अलग अलग दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम है। कुंभकर्ण माने जो अज्ञान की नींद में बहुत देर तक सोता रहा, रावण मेघनाथ तो पहले जग गए और कुंभकर्ण अंत तक सोता रहा। तो कुंभकर्ण कौन हुए? जिनके कान कैसे हैं? कुंभ की भांति। कुंभ माना भरा, यानी जिनके ज्ञान, जिनके कान रूपी घड़ों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान तो भरा हुआ है लेकिन आचरण में वो ज्ञान नहीं आता। तो जैसे अज्ञान की नींद में सोए हुए, ज्ञान होते हुए भी, रावण ज्ञानी था लेकिन ज्ञानी होते हुए भी जैसे अज्ञानी हो गए। तो जो अज्ञान की निद्रा में अंत तक घोर निद्रा में सोए रहते हैं, वो हुए कुंभकर्णी निद्रा वाले। अभी ये सब हैं आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, कृष्ण की बात नहीं है कि कृष्ण वाली आत्मा कोई आकर के श्रीमत देती है। वो श्रीमत लेने वाली है या देने वाली है? वो तो श्रीमत लेने वाली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम देवता बनते हो? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तीन धर्मों की स्थापना होती है परमात्मा के द्वारा। कौन सा धर्म स्थापन हुआ अभी तक? सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ ब्रह्मा द्वारा। लेकिन देवता और क्षत्रिय कौन बन गया कौन नहीं बन गया ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन ये दोनों धर्म भी स्थापन होते हैं। ब्राह्मणों में जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, संपूर्ण पवित्रता पालन करने वाले आपस में भाई बहन बन जाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, वो तो हो गए ब्राह्मण। जो देवता, देवता धर्म के भी वही साबित होंगे। और जो फेल हो जाते हैं वो हो गए क्षत्रिय। तो दूसरा कोई धर्म वहां नहीं होता है क्षत्रिय त्रेता में, तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं। दोनों युग की एज तो एक है, 1250 वर्ष। शत्रु में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन किसने की? जिसने देवतावान स्थापन किया, देवता धर्म स्थापन किया, तो देवता धर्म स्थापन करने के साथ साथ राजधानी स्वतः ही स्थापन हो जाती। और जो फेलियर हुए पढ़ाई में, जो फेल हो गए, पढ़ाई पूरी नहीं पड़ी, तो चंद्रवंशी हो गए। तो दोनों कुल स्थापन होने के साथ साथ उनका, उनकी राजधानी भी स्थापन होती है। क्योंकि सूर्य और चंद्र जब नाम है तब उनके कुल भी है। सूर्य चंद्र नाम नहीं होगा तो कुल भी स्थापन नहीं होगा। तो सूर्यवंशी कृष्ण कहा जाता है, चंद्रवंशी राधा कही जाती है। ये भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये भी संगम युग की बात है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो विशेष है वो हुए चंद्रवंशी। और जो ज्ञान सूर्य बाप की मुरलियों को ही फॉलो करने वाले हैं, परमात्मा ज्ञान सूर्य की वाणी को फॉलो करने वाले हैं, किसी देहदारी को फॉलो करने वाले नहीं है, वो हुए सूर्यवंशी। तो ऐसे सूर्यवंशी में कृष्ण पलता है और वैसे चंद्रवंशी में राधा पलती है। तो पूछा ये सूर्यवंश की राजधानी किसने स्थापन की, चंद्रवंश की राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंश की राजधानी राम ने स्थापन की और सूर्यवंश की राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? ऐसे कहेंगे नहीं। दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, न राम और न लक्ष्मी नारायण। क्यों? तो लक्ष्मी नारायण तो सचिव का नाम है और राजा की स्थापन कहाँ हुई, राजधानी कहाँ स्थापन हुई, संगम ही हुई। तो परम पिता परमात्मा ने ये राजा की स्थापन की, सचिव त्रेता की राजाई रची है। ये स्वयं का रचयिता है बाप। बाप कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ये फिर प्राय लोप हो जाएगा। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में कोई आकर के ये राज्यों को सिखा सकेगा और राजा बना सकेगा या राजाई की पढ़ाई पढ़ा सकेगा। इस्लामी बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि भूलेंगे नहीं, वो चलता चला आता है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसने स्थापन किया उसका नाम रूप देश काल सब भूल गए। उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सब जानते हैं। ये देवता धर्म कैसे मैं स्थापन करता हूँ ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि स्थापन करने वाला अपने को गुप्त कर देता है, अपनी प्रत्यक्षता नहीं होने देना चाहता। और वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वो देहधारी मनुष्य है, देहधारी मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है। मनुष्य को रथ होता है, जिसको रथ होता है वो स्वार्थी होता है और जो स्वार्थी होगा वो अपना नाम बाला पहले करेगा। और परमात्मा बाप को अपना रथ होता नहीं, इसलिए अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है, है? कि जिसने अपने आप सारा सब कुछ किया और अपने आप को छुपाई दिया उसको सब भूल जाते, और जिसने एडवर्टाइजमेंट करके अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया संसार में, अपने को भगवान साबित कर दिया, उनका नाम बाला हो जाता है दुनिया में और परमात्मा को सब भूल जाते हैं। परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, वो परमात्मा पार्ट क्या है, पार्टधारी कौन है, वो सब भपले में पड़ जाता है। तो द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं, एक ही इस्लामी बौद्ध धर्म में ये सैकड़ों सेक्शन हो गए, आपस में कितना लड़ते। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे ये सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिए। स्वर्ग में जो देवी देवताए थे उनको फिर माया आकर के चटक पड़ी, पूरे बेगुण बन गए हैं। गाते भी है मैंने रूह हारे में कोई गुण नहीं, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर होते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। आप बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी, तभी तो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मुझो तो बाबा को चिट्ठी लिख करके पूछो, बाप को याद करो, तब कोई बात में मुझान पैदा हो तो देहधारियों के पास नहीं भटको, उनसे मत लेने से क्या होगा, वो अपना प्रभाव पुरस्कार कर देंगे। तो बजाय श्रीमत के क्या कैसी मत देंगे, नष्ट मत मिलेगी। तो जब कभी बुझो तो किसको याद करो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद ही नहीं करने देती ऐसे समय पर। बाप कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, माने जो भी कदम जिंदगी में उठाओ कोई कार्य करने के लिए तो किसकी मतलब, जो बाबा की मतलब। लेकिन माया क्या है, माया ऐसे समय पर अपनी टांग अड़ा देती, वो माया रावण आकर के अपनी मत देने लग पड़ता है और हम उसकी मत को स्वीकार भी कर लेते। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख करके पूछना चाहिए इस हालत में हम क्या करें। तो चिट्ठी लिख के किससे पूछेंगे, देहधारी धर्मगुरुओं से पूछेंगे या परमपिता परमात्मा से पूछेंगे, शिव बाबा की रास ब्रह्म किससे पूछेंगे, शिव बाबा की रास ब्रह्मा से पूछेंगे। और ब्रह्मा मर जाए तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया हो तो किससे पूछें, सूक्ष्म पतनवासी बन जाए तो किससे पूछें,
साकार को।
साकार को, अरे ब्रह्मा तो साकार होता ही, ब्रह्मा साकार करने के द्वारा ही तो परमात्मा संसार में आता है। हाँ बताया मुरली ने, ये ब्रह्मा चला जाएगा तो जिस तन का भी आधार नहीं है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। इसलिए बताया कि ब्रह्मा बाप ने सेवा स्थान चेंज किया है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान परिवर्तन किया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बाप है ही नहीं, ब्रह्मा बाप तो लगातार इस शक्ति पर कार्य उनका करना ही करना, होना ही होना जब तक ये शक्ति स्वर्ग नहीं बन जाती, इससे पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो जाता। तो बच्चों को चिट्ठी लिखकर बाबा से पूछना चाहिए, बच्चे की शादी है इस हालत में हम क्या करें, बस घर वाले हैं वो तो ज्ञान में चलते नहीं, अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, वो तो चाहते नहीं कि बच्चे की शादी हो, ऐसे ही थोड़े समय के लिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मुझे हुए हैं क्या करें, घर वाले तो तैयार बैठते हैं कि शादी जरूर करेंगे, तो इस हालत में हम क्या करें। तो बाबा से चिट्ठी लेकर के पूछो तो बाबा बताएंगे तुम क्या करो, कोई मरा है क्या करें, क्योंकि तो दुनिया तो अपनी तरह से खींचेगी, ये करो ये करो ये करो, दुनिया वाले नजदीक हैं, वो नजदीक होने के कारण अपनी मत देने लग पड़ेंगे, अरे मर गया तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे हो कुछ करो, तो कोई मरा क्या करें, तो बाबा से मत लेनी चाहिए, वाह कोई मर गया और बाबा से मत लेने के लिए हम चिट्ठी डालेंगे तो क्या होगा, जब तक चिट्ठी जाएगी जवाब आएगा तब तक वो बदबू फैलने लगेगी चारों तरफ, फिर क्या करें, कदम कदम पर श्रीमत कैसे ले लें, अरे नहीं बुद्धि में आता, यानी परमात्मा बाप के लिए बुद्धि में नहीं आएगा, संबंधियों के लिए बुद्धि में आ जाएगा कि हाँ टेलीफोन कर दो, परमात्मा बाप के लिए बुद्धि में नहीं आएगा कि टेलीफोन कर दो। तो बच्चों को मत लेनी चाहिए, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है, कृष्ण की मत तो हो नहीं सकती, कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है, कृष्ण तो पावन है या पतित, कृष्ण तो पावन होता है वो पतित दुनिया में कैसे आ सकता है, कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग अभी सीख रही है, क्या कृष्ण की आत्मा या तो राजयोग सीख रही है या फिर पहले जन्म में जाके कृष्ण बनेगी, या तो सीखने वाली है या फिर पद पाने वाली है, सिर्फ कृष्ण की आत्मा है क्या, जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वो सब अभी ब्राह्मण बने, तो सिर्फ कृष्ण की आत्मा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो भी उसके संगी साथी हैं सारे ही ब्राह्मण हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पर पापों का बोझ बहुत है, बल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है 8 घंटा गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो टाइम है उसमें याद करो, कम से कम 8 घंटा तो मेरी सर्विस में रहो, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो, कौन सी शंख ध्वनि, सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन करके बाप से बरसा लो, बाप स्वर्ग रखते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो भारत नरक का मालिक है, क्या ये भी क्लियर किए दे रहे हैं तो गलत फहमी हो जाए, भारत स्वर्ग का मालिक बनता है वो तो भविष्य में बनेगा, लेकिन अभी अभी भारत काहे का मालिक है, नरक मानो स्वर्ग मानो, स्वर्ग मानो शिवालय और नरक मानो वैश्यालय, अच्छा जिस घर में वैश्याएं रहती हैं उन वैश्याओं के घर का मालिक है, तो ठीक तो मधुबन क्या हो गया है, अरे सबके ना आ गए क्या हुआ, मधुबन तो मधुबन है, शिवालय है कि वैश्यालय है? शिवालय। अगर माया का असर होता है तो क्या है, तो मधुबन में भी वैश्याल बुद्ध पड़ता है। अगर माया का असर नहीं होता, असर निश्चय बुद्धि है कि हमको परमात्मा बाप पढ़ा रहा है, तो मधुबन मधुबन है। मधुबन को फिर वैश्याले वैश्याले नहीं कहेंगे। तो अभी तो भारत नरक का मालिक है, नरक में दुखी होते। अगर मधुबन में रह करके भी कोई दुखी होते हैं तो कौन से घर में है? मधुबन बाप के घर में है, मधुसूदन बाप के घर में है या वैशाली में, नरक में है? कहाँ है? बाप के घर में। दुखी होते हैं तो भी, दुखी होते हैं तो नरक में हुए ना, वैशाली में हुए ना, जरूर किसी दूसरे के प्रभाव में आने वाले हुए ना, रावण के प्रभाव में आने वाले हुए ना, राम बाप के प्रभाव में आने वाले थोड़े हुए। नरक में दुखी होते हैं तो बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी, बिस्तर ठिकर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है जो मेरे को बिस्तर ठिकर में समझ लिया। बिस्तर माना भीत की तरह, भीत माना दीवाल, जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़े हो जाए, न खुद आगे बढ़े न दूसरों को आगे बढ़ने दे, न परमात्मा के बने न दूसरों को परमात्मा का प्रैक्टिकल में बनने दे, ऐसे भीतर बुद्धियों में भी परमात्मा आया हुआ है। किसी भी श्रीमत ले उसे जैसे ये चलाए वैसे चलो, तो समझते हैं भीतर बुद्धियों में परमात्मा ठीक कर, जो ज्ञान की गली में चलते चलते थोड़ी सी ठोकर लग जाए और टूट जाए, जैसे मिट्टी का ढेला, उसको कहते हैं ठिककर। तो जिनकी जिंदगी ऐसी है ज्ञान में चलने वालों की, कि थोड़ा सा माया का ठोकर लगती है और ज्ञान में से टूट पड़ते, फट पड़ते हैं, ऐसा में समझ लेते हैं भगवान आया है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल कर दी, ये सब होने वाला है। ऐसे ठिककर बुद्धि अभी प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है अंत में माया उन्हीं की पिछाड़ी पड़ेगी। अभी तुम्हारी पिछाड़ी पड़ रही, फिर माया उन्हीं की पिछाड़ी पड़ेगी। तो ऐसे टूटेंगे जैसे मिट्टी के ढेले, तुम हो जाओगे स्थिरियम और वे मिट्टी की ढेले की तरह बिखर पड़ेंगे। तो ये सब ड्रामा में नूद है। अब इस भूल से बाहर निकलो। तीसरा पेज, ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी विचारी हो गई है। मौत आकर के सामने खड़ा है, मैं आता हूँ अंत में, जब सभी भ्रष्टाचारी बन पड़ते। माया 100% भ्रष्टाचारी बनाती है, क्योंकि माया का राज्य है। जब 100% भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, तब मैं आकर के 100% भ्रष्टाचारी बनाता हूँ। तो फर्क हुआ ना, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बात को भूल जाते हैं, माया रावण को, हाँ माया रावण का कैसा राज्य चलता है, कैसा राज्य चलता है ये भी कोई जानते नहीं है। रावण का बुत जलाते हैं, ये पीछे रिवाज निकला है। ऐसे नहीं द्वापर युग से ही रावण को जलाने का रिवाज निकल पड़ा। कोई किसी को बहुत दुख देता है तो उसका पुतला बना करके जलाया जाता है। तो द्वापर युग से इतना दुख शुरू नहीं हुआ, दुख जाते शुरू कभी हुआ है? कलयुग में, तम प्रधान युग में। तो ये पीछे रिवाज निकला है, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण को जलाते जाते हैं और हर वक्त बड़ा होता जाता है। ये भी यादगार कहाँ किए, कैसे अरे त्रेता युग की शूटिंग की बात है, जब एडवांस पार्टी निकलती है तो रावण का पुतला बुद्ध रूपी क्षेत्र में बनाया जाता है, उनके चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं रावण का पार्ट बजाने वालों के। तो पुतला बन गया ना, चलो कागज में नहीं बनाया लेकिन बुद्धि में तो चेहरे छपने लग पड़ते हैं। तो ये चेहरे छप जाते हैं जैसे पुतला बन गया, और जब वो पुतला बन गया और गलियों में दीवालों में और मनुष्यों की बुद्धि में जब ये आने लगा तो रावण का दिल जलता है, हमको असुर रावण सिद्ध कर दिया। तो हर वक्त रावण को जलाया जाता है और हर वक्त रावण और बड़ा हो जाता है, माने और ज्यादा जोर शोर से सर्विस करने लग पड़ते हैं। कौन? वो रावण संप्रदाय।
आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट एकदम छत जितना लंबा बना देते। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते, ये बड़ा पुतला जो है किस बात की यादगार है? ये है बड़ी बुद्धि की यादगार। पांडवों को भी बड़े बड़े चित्र बनाते हैं किस बात की यादगार? उनकी बुद्धि विशाल थी, तो रावण की भी बुद्धि विशाल होती है। बुद्ध महात्मा बुद्ध की भी बुद्धि विशाल थी, लेकिन बुद्धि विशाल होना अलग बात, और विशाल बुद्धि एक परमात्मा की मत पर चले और एक विशाल बुद्धि अपनी मत पर या मनुष्यों की मत पर चले, तो कितना अंतर पड़ेगा? बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो बताया बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते, अब इतने बड़े तो मनुष्य होते नहीं, तो बुद्धि को कैसे बड़ा दिखाए? तो शरीरों को उन्होंने बड़ा बड़ा दिखाई दिए। राम लक्ष्मण के चित्र छोटे छोटे बनाएंगे और रावण को मुख्य मेघनाथ के चित्र बहुत बड़े बड़े पुतले बना देंगे। माना रामकृष्ण की क्या बुद्धि विशाल नहीं थी? विशाल तो थी, लेकिन परमात्मा के सामने अपनी बुद्धि को उन्होंने बच्चा बुद्धि समझ लिया कि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, जो भी कार्य करेंगे कदम कदम पर श्रीमत लेकर के करेंगे, ऐसे न हो कि कोई हमसे भूल हो जाए। तो उन्होंने विशाल बुद्धि होते हुए भी अपने को छोटा समझा या बड़ा समझा? उन्होंने अपने को छोटा समझा, निरहंकारी बन करके रहे, बाप से मत लेते रहे। तो राम लक्ष्मण का चेहरा तो चित्र जो है वो छोटा बनाया जाता और रावण अपने को बड़ा समझता था, तो उसका चित्र उसका चेहरा उसका पुतला बड़ा बनाया गया। अब मनुष्य इतने बड़े तो नहीं होते, जाति मनुष्य 6 फुट के होंगे, लक्ष्मीनारायण भी इतने ही होंगे, ऐसे नहीं वहाँ आयु बड़ी होती है तो कोई शरीर से बड़े बन जाते। लक्ष्मीनारायण भी इतने ही होंगे, मनुष्य तो मनुष्य ही है, जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले हैं कोई कैसे हैं, भारत में सुंदर भी थे अभी श्याम बने, सुंदर बनाने वाला है बाबा, वो है हसीन मुसाफिर, वो तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको भूलना नहीं चाहिए, इनको भल भूल जाओ, किनको हैं? वो जो हसीन मुसाफिर है वो दूर कर दिया उसे, हैं? वो तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए, किनको? उनको, इनको भल भूल जाओ, मन हाँ, माना ब्रह्मा का जो पार्ट था वो ब्रह्मा का पार्ट भले भूल जाओ, कोई ऐसा नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आने वाला पार्ट है भविष्य में परमात्मा पार्ट, उनको उनको नहीं भूलना चाहिए। हमेशा समझो, हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाते, कहते ना एक तालाब है, उस तालाब में डुबका लगाने से मनुष्य परी बन जाता है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हो?
तो सर मैं एक बात की पेश कर, 3/4/88 का प्रातः क्लास गीत है मुझको सहारा देने वाले,
और यहाँ से बाहर निकले और भूले, 3/3 फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहे अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है, कुछ अवज्ञा थी तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। किसकी अवज्ञा थी? बाप की, क्योंकि बाप ने माया बेटी को डायरेक्शन दिया हुआ है, तो बच्ची जो मेरे डायरेक्शन पर न चले, श्रीमत पर न चले, उनको खूब फटकाओ। बाबा बच्चों से भी कह देते हैं, बच्चे माया बहुत कड़ी है, उधर माया को उजकार दिया, इधर बच्चों को भी सावधानी देते हैं, माया बहुत कड़ी है। अवज्ञा करने से माया एकदम गिराई देती है, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो क्या थे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। माना कहाँ चढ़े? हाँ, परमात्मा बाप के दिल पर चढ़ करके रहे। कहते ना ये तो बच्चा दिल पर चढ़ा हुआ है। कोई बच्चे ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं कि माँ बाप के दिल से उतर जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कैसे बच्चों के प्रति मीठे मीठे, कड़ुए बच्चों के प्रति नहीं, और शिकील दे मीठे मीठे, माना मीठी बात करने वाले, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, ऐसे बच्चों को। और सिकिल में बहुत सिख से जिनसे मिला जाए, जैसे कोई बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ होता है और कहीं मिल जाता है अचानक, तो बड़े प्यार से बैठ करके रज रज के बातें करेंगे। कांता बहुत हंस रही खास अनुभूति होती है क्या? मात पिता बाप दादा का याद किया, ये अलग अलग क्यों कर दिया? क्या मात पिता माना एक स्त्री का रूप, एक पुरुष का रूप। मात पिता रुद्रमाला और विजयमाला दोनों में से हैं या सिर्फ एक माला में से है? मात पिता का रूप कौन सी माला से बनता है? कैसे?
रुद्रमाला
ही बीज की माला है।